दिन भर तारीख 22 सितंबर दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी पीएम के भाषण पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया, पड़ोसी मुल्क को बताया टेररिस्तान।
इस दफे शब्द थे वो बहुत कड़े से, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से बहुत कड़ा स्पीच हुई, इसलिए हमारी तरफ से भी हमने जवाब दे दिया।
नोएडा में सीवर सफाई के दौरान 3 की मौत, क्या है सफाई कर्मियों का शिकवा।
दिल्ली पे एक महीने के अंदर 10 गाय मरे तो आग लग जाएगा, 10 दलित सफाई कर्मचारी मरे तो कोई भी इस पे बात ही नहीं होते।
और विवेचना में बात पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना की ओर से बीते साल की गई सर्जिकल स्ट्राइक की।
गोलियां कान के पास से जा रही थी, कहते जब कान के पास से गोली जाती है तो ऐसी आवाज आती है पट पट, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मौत के कितने नजदीक थे ये जांबाज सिपाही।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने संबोधन में भारत प्रशासित कश्मीर का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि वहां पर भारत की सेना आम लोगों पर पैलेट गन बरसा रही है। इसके अलावा उन्होंने भारत पर पाकिस्तान के अंदर चरमपंथी ताकतों की मदद करने का आरोप भी लगाया है। संयुक्त राष्ट्र में इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए भारत ने जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को टेररिस्तान बताया है। भारत ने पाकिस्तान वो देश है जिसने ओसामा बिन लादेन को बचाया और मुल्ला उमर को अपने यहां शरण दी, अब वो चरमपंथ पर तर्क दे रहा है और खुद को पीड़ित बता रहा है। हिंदी फिल्म न्यूटन को ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकन के लिए भारत की तरफ से भेजा गया है। फिल्म न्यूटन सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में दुनिया की दूसरी फिल्मों से मुकाबला करेगी। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका अभिनेता राजकुमार राव निभा रहे हैं। राजकुमार राव ने इस फिल्म में एक चुनाव अधिकारी का रोल निभाया है जो नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव करवाने जाता है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हताशा से उन्हें यकीन हो गया है कि उत्तर कोरिया का हथियार विकसित करना सही कदम है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन को लेकर कहा था कि रॉकेट मैन खुदकुशी के मिशन पर है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर अमरीका को अपनी रक्षा करनी है तो उसे उत्तर कोरिया को पूरी तरह नष्ट करना होगा। वहीं मंगलवार को सरकारी मीडिया को दिए एक बयान में उत्तर कोरिया के नेता ने कहा कि ट्रंप को संयुक्त राष्ट्र के दिए अपने हाल के भाषण के परिणाम भुगतने होंगे। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो से जब न्यूयॉर्क में पूछा गया कि किम जोंग उन किस तरह से ठोस जवाब की बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा। मुझे लगता है कि एक ऐसा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम परीक्षण होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ये थे उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि तेहरान को अपना मिसाइल कार्यक्रम चलाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तेहरान में एक सैन्य परेड कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ईरान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो, ईरान आक्रामक ताकतों को रोकने के लिए अपनी सैन्य और रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा। न सिर्फ जमीन पर मार करने वाली मिसाइल बल्कि हवा और नौसैनिक ताकत को भी बढ़ाया जाएगा। हमें अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी की भी इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। ये थे हसन रूहानी के शब्द। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इसी हफ्ते अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर खतरनाक मिसाइलों का विकास करने का आरोप लगाया था। उन्होंने ईरान के साथ दुनिया की महाशक्तियों के परमाणु समझौते को शर्मिंदगी का विषय भी बताया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्या मुस्लिमों की रक्षा के लिए म्यांमार के अंदर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कहा कि 8 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं और इनमें से करीब 4 लाख शरणार्थी रखाइन प्रांत में 25 अगस्त को म्यांमार की सेना के अभियान के शुरू होने के बाद आए हैं। उन्होंने म्यांमार की सेना पर दोनों देशों की सीमा पर जमीनी सुरंगें बिछाने का आरोप भी लगाया है, जबकि म्यांमार इसे बेबुनियाद आरोप बताता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी सेना ने सीरिया में कुछ ठिकानों पर निशाना बनाकर भूमध्य सागर में स्थित पनडुब्बी से रॉकेट दागे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी में बीते साल चरमपंथी हमला हुआ। इसके कुछ दिन बाद भारतीय सेना ने जानकारी दी कि उसने नियंत्रण रेखा के करीब सीमा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने इस दावे पर सवाल उठाए। सर्जिकल स्ट्राइक पर आई एक किताब के जरिए हम आपको बताएंगे कि एक साल पहले नियंत्रण रेखा के पार क्या कुछ हुआ था। लेकिन पहले आपको बता दें कि सरहद से कई हजार किलोमीटर दूर संयुक्त राष्ट्र में भी भारत और पाकिस्तान के बीच बहस छिड़ी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने संयुक्त राष्ट्र के सालाना अधिवेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा,
द कश्मीर डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व जस्टली पीसफुली एंड एक्सपेडिशियसली। सेक्रेटरी जनरल शुड अपॉइंट स्पेशल एनवॉय ऑन जम्मू एंड कश्मीर।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्बासी कह रहे थे कि कश्मीर का विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से जल्दी ही होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष दूत नियुक्त करना चाहिए। उन्होंने भारत पर चरमपंथ निर्यात करने का भी आरोप लगाया। इसके बाद भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी इनम गंभीर ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं।
इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट द स्टेट व्हिच प्रोटेक्टेड उसामा बिन लादेन एंड शेल्टर्ड मुल्ला उमर should have the gumption to play the victim.
इरम गंभीर कह रही थी कि यह अभूतपूर्व स्थिति है कि जिस देश ने उसामा बिन लादेन को महफूज रखा और मुल्ला उमर को संरक्षण दिया उसमें खुद को पीड़ित की तरह पेश करने का साहस है। पाकिस्तान के सभी पड़ोसी देश इस चालाकी भरे हथकंडे से वाकिफ हैं। ये महासभा और बाकी दुनिया जानती है कि तथ्य गढ़ने की कोशिश में सच्चाई बदल नहीं जाती। अपने छोटे से इतिहास में पाकिस्तान की जमीन आतंक का पर्याय बन चुकी है। पाकिस्तान अब टेररिस्तान है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच आरोप का दौर पहले भी दिखा है लेकिन इस बार तल्खी नए स्तर तक पहुंच गई लगती है। इसे लेकर बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार ने भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल से बात की और सबसे पहले पाक पीएम के भाषण के बारे में ही पूछा।
देखिए, हर साल जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन जनरल असेंबली जाते हैं तो उनकी स्पीच तो प्रेडिक्टेबल होती है। वो कश्मीर के ऊपर बहुत बात करते हैं। नवाज शरीफ ने भी बहुत कड़ी स्पीचेस की थी कश्मीर का के मुद्दा लेकर। लेकिन इस समय मैंने देखा है अब्बासी साहब की जो स्पीच थी वो तो बहुत ही हॉस्टाइल थी। तो उसके दो तीन कारण हैं। एक तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बहुत है, यूनाइटेड स्टेट्स का दबाव पड़ गया है, इसलिए उनका जो कैलकुलेशन ये है कि भाई ऑफेंस इज बेटर स्ट्रेटजी के डिफेंसिव रहने के बजाय हम आक्रमण करें और शब्दों से, तो इसलिए बहुत उन्होंने कड़ी स्पीच की। और दूसरा ये भी मुझे लगता है कि वहाँ कुछ नर्वसनेस बढ़ गई है क्योंकि हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की है कश्मीर वैली में पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ही टेररिस्ट मारे गए और सिचुएशन को भी थोड़ा सा कंट्रोल किया है। और दूसरा ये जो NIA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की हैं हुर्रियत के खिलाफ, सेपरेटिस्ट के खिलाफ, जो उनको पैसा मिलता है पाकिस्तान ISI के थ्रू उसकी जो तफ्तीश हो रही है, तो उससे भी ये जो कश्मीर की मूवमेंट है उसको धक्का पड़ा है। और तीसरा ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी बड़ा स्टेप लिया है। उन्होंने एक तो हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर को सैयद सलाहुद्दीन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और दूसरा उसकी ऑर्गेनाइजेशन को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो इसका मतलब कि जो कश्मीरी हिस्सा है उसको भी यूनाइटेड स्टेट्स ने डीलिजिटिमाइज कर दिया। तो इसके कारण मुझे लगता है कि अब्बासी ने बहुत कड़ी स्पीच की और सुनने वाले तो ना ही संयुक्त राष्ट्र में हैं ना कहीं और हैं, सुनने वाले तो पाकिस्तान में हैं। तो ये पाकिस्तान डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ ये स्पीच का रुख था। लेकिन इससे दो बातें और निकलती हैं। एक तो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, तो इसलिए जब इलेक्शन होगी नई गवर्नमेंट आएगी देखना पड़ेगा कि किस किस्म की कौन जीता है और कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो इसलिए इन्होंने जो कहा इसका कोई महत्व इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं है क्योंकि सब देखते हैं कि ये तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज है बहुत बिगड़ गई है।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल भारत ने भी पहली बार किया है पाकिस्तान के खिलाफ?
नहीं, आगे भी किया है, लेकिन इस दफे जो शब्द थे वो बहुत कड़े से, मैं मानता हूँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की ओर से बहुत कड़ा स्पीच हुई तो इसलिए हमारी तरफ से भी हमने जवाब दे दिया।
ये थे कंवल सिब्बल और उनसे बात कर रहे थे प्रदीप कुमार।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
दिल्ली से सटे नोएडा में कल सीवर की सफाई करने उतरे 3 लोगों की मौत हो गई। ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। बीते कुछ महीनों के दौरान 10 अन्य सफाई कर्मियों की इसी तरह मौत हो चुकी है। ऐसी घटनाओं के बाद सुरक्षा बेहतर करने की मांग उठती है, लेकिन सफाई के काम में लगे लोगों को बदलाव आने की उम्मीद कम ही है। सुनिए बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की ये रिपोर्ट।
दिल्ली के हिरण कुदना इलाके में बहने वाले नाले में आसपास के घर, मोहल्लों और फैक्ट्रियों का मलमूत्र, केमिकल्स और कूड़ा जमा होता है। चारों ओर फैली सड़न से सांस लेना मुश्किल था। नीतू और अजीत नाले में गर्दन तक डूबे हुए थे। उन्होंने जोर से मुंह बंद कर रखा था। एक के हाथ में बांस की कपच्ची थी, दूसरे के हाथ में लोहे का कांटा, जिससे वो नाले की तली में फंसे कूड़े को खोद रहे थे।
खतरे तो इसमें बहुत होते हैं जी, कंचे लग जाता है, बाहर निकलते हैं देख रहे हो काला काला पानी, गैस का ही पानी होता है, जो जैसे हम बाहर निकलते हैं ना तो हमारे पंजों में जो गार होती है वो ऐसे गैस बन जाते हैं, उससे बंदे क्यों मरते हैं, ऐसे ही मरते हैं जो बिना देखे घुस जाते हैं ना तो वैसे ही मरते हैं।
नाले से निकलकर जांघिया पहने दुबले पतले नीतू थोड़ी देर धूप में खड़े हुए थे तो पसीना उनके नंगे शरीर पर लगे बदबूदार पानी और कीचड़ से मिलकर अजीब सी महक पैदा कर रहा था। नीतू ने यह काम 16 साल की उम्र में शुरू किया। दिल्ली में वो अपने जीजा दर्शन सिंह की फास्ट फूड दुकान में रहते हैं। दुकान तक पहुंचने के लिए झोपड़पट्टी की तंग गलियों से होकर गुजरना होता है। इन्हीं झोपड़पट्टियों में कई सीवर कर्मचारी रहते हैं। हम दर्शन सिंह के ढाबे पर पहुंचे। उन्होंने 12 साल मैला साफ किया, लेकिन पास की इमारत में 2 लोगों की मौत होने के बाद उन्होंने ये काम छोड़ने का फैसला किया।
यही हमारे यहाँ से झुगियों से 2 थे, उन लोगों ने उनका कॉन्टैक्ट ले लिया और कॉन्टैक्ट भी क्या लिया 2000 के अंदर। वो लोग उन्होंने क्या किया, उसके अंदर घुस गए। अब पहले जो बंदा घुसा है उसके अंदर वो बंदा वहीं रह गया क्योंकि गैस बड़ी थी। ऊपर जो खड़ा हुआ था उसी का बेटा था, उसने आवाज दी, आवाज नहीं आई, वो भी उसके अंदर उतर के वो अंदर घुस गया, वो तो दोनों वहाँ ही खत्म हो गए अंदर ही।
गैर सरकारी संस्था प्रैक्सिस ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि हर साल दिल्ली में करीब 100 सीवर कर्मचारियों की मौत होती है। डॉक्टर आशीष मित्तल,
जो आदमी सीवर में अगर बार बार काम करने के लिए उतरता है तो उसकी ज़िंदगी बहुत कम हो जाती है क्योंकि बार बार एक्सपोजर से इनके स्किन की बीमारियाँ, बार बार कंटेक्ट डर्मेटाइटिस होने की पॉसिबिलिटी रहती है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होती हैं इनको, जो सांस वाली बीमारियाँ हो जाती हैं, जो रेकरेंट डायरिया इनको बोलते हैं कि बार बार इनको दस्त लगे रहते हैं, वो एक जो ये कंप्लेंट करते हैं लोग।
हम इस वक्त हैं दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में, जहां पर एक व्यक्ति की सीवर में जो जहरीली गैस निकलती है उससे मौत हो गई है। आइए चलते हैं उस इलाके में, उस जगह पर जहां ये हादसा हुआ।
जिस टाइम मैं यहां पे आया तो मैंने ऋषि पाल को बोला आप उस्ताद चले गए, तो उन्होंने हाथ उठाया, हाथ में ये जिस टाइम कूड़ा पड़ा है, इन्होंने हाथ में कूड़ा उठाया और वो मौके वहीं ऐसे लेट गिर गए।
पास ही ऋषि पाल की बेटी ज्योति मौजूद थी।
कोई सेफ्टी नहीं दे रखी, कोई अंदर जा रहा है तो आपको सेफ्टी तो देनी चाहिए।
कानून के मुताबिक सीवर साफ करने का हाथ से काम आपातकाल में ही करना होता है और उसके लिए सीवर कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण देने होते हैं, लेकिन असल में ज्यादातर कर्मचारी नंगे बदन सीवर में काम करते हैं। दिल्ली जल निगम की डायरेक्टर रेवेन्यू निधि श्रीवास्तव ने बीबीसी से बातचीत में मौतों की जिम्मेदारी ली और कड़े कदमों का भरोसा दिलाया, लेकिन इन वायदों पर कितना भरोसा किया जाए? सफाई कर्मचारी आंदोलन के बेजवाड़ा विल्सन कहते हैं,
अगर दिल्ली पे एक महीने के अंदर 10 गाय मरे तो आग लग जाएगा, 10 दलित सफाई कर्मचारी मरे तो इतने क्रिमिनल साइलेंस है, कोई भी इस पे बात ही नहीं होते।
नीतू के जीजा दर्शन सिंह ने बीबीसी से बताया कि वो अनपढ़ हैं और उनके पास कोई काम नहीं, परिवार को पालने के लिए उन्हें ये काम करना पड़ता है। कई बार सफाई कर्मचारी बच्चों को नफरत के डर से अपने काम के बारे में नहीं बताते। दर्शन सिंह कहते हैं, बहुत से लोग हमसे नफरत करते हैं क्योंकि ये काम गंदा है, लेकिन अगर हम नफरत करेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काबू में है कच्चे तेल की कीमत, फिर भी आसमान पर है पेट्रोल और डीजल के दाम।
क्यों नहीं घट रहा है टैक्स का बोझ, क्यों जीएसटी से बाहर है पेट्रोलियम उत्पाद, क्या सरकार दे सकती है लोगों को महंगाई से राहत, इस बार इंडिया बोल में इन्हीं सवालों पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 23 सितंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
एक साल पहले उड़ी हमले के बाद भारतीय कमांडोज ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चरमपंथियों के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक कर 40 चरमपंथियों को मारने का दावा किया था। पाकिस्तान ने इसका जोरदार खंडन करते हुए कहा था कि इस तरह का कोई हमला हुआ ही नहीं था। पिछले दिनों शिव अरूर और राहुल सिंह की एक किताब प्रकाशित हुई है, इंडियाज मोस्ट फेयरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक का विवरण पहली बार आम लोगों से साझा किया गया है। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर दौड़ा रहे हैं एक साल पहले हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर।
कल भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है।
जब 29 सितंबर 2016 को भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की, तो भारत क्या पूरी दुनिया इसे सुनकर अवाक रह गई। ऐसा नहीं था कि इससे पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक्स न की गई हों, लेकिन यह पहली बार था कि भारतीय सेना दुनिया को साफ साफ बता रही थी कि वास्तव में उसने ऐसा किया था। आखिर क्या कारण थे कि भारतीय सेना को ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
तारीख 18 सितंबर और दिन रविवार, भारत प्रशासित कश्मीर के उरी में सेना मुख्यालय पर चरमपंथी हमले में 17 जवानों की मौत। सेना का दावा, जैश ए मोहम्मद ने किया हमला।
All 4 terrorists have been killed by the Indian Army and as per the initial reports they belong to जैश ए मोहम्मद तंजीम।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमले के पीछे के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
जैसे ही ये खबर सिंक इन हुई, दिल्ली के रायसेना हिल्स पर गतिविधियां तेज हो गईं। आनन फानन में गुप्त वॉर रूम में भारत के सुरक्षा प्रबंधन की खुफिया बैठक बुलाई गई, जिसमें कम से कम एक बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ शामिल हुए। इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज के सह लेखक राहुल सिंह बताते हैं।
रेहान, इसकी शुरुआत हाईएस्ट लेवल से हुई थी। हमने बहुत सारे जनरल से बात की है, स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर से बात की है, बहुत सारे लोग जो इस ऑपरेशन का हिस्सा थे उनसे बात की है। एक बात तो तय थी कि सबके दिमाग में ये था कि ये कोई छोटी हरकत नहीं है जो उड़ी में हुई है और इसका कुछ ना कुछ रिएक्शन बड़े तौर पे दिया जाएगा, पर ये नहीं पता था कि मोदी सरकार ये परमिशन देगी, जो कि एक हर एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर का सपना है कि मैं कुछ इस टाइप का ऑपरेशन करूं जिसके पीछे सरकार का पूरा वजन है। तो जो सब कुछ हुआ वो टॉप से हुआ था, एकदम टॉप से, ओनली ऑन नीड टू नो बेसिस। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था और नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर में, उन्होंने ऑप्शंस दिए थे कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर हम इतना अंदर जाते हैं तो हमारा इतना नुकसान हो सकता है, अगर हम थोड़ा कम अंदर जाते हैं हमारा कम नुकसान हो सकता है। तो वो सारे ऑप्शंस को फिर टॉप लेवल्स पे, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, एनएसए के लेवल पे, आर्मी चीफ के लेवल पे, उस लेवल पे वो सारे ऑप्शंस को स्टडी किया गया बहुत ही माइन्यूट तरीके से और फिर ये फैसला लिया गया।
सीमा पार पृथकतावादियों के लॉन्च पैड्स को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी एलीट पैरा एसएफ के 2IC मेजर टैंगो को दी गई। ये उनका असली नाम नहीं है। सुरक्षा कारणों से इस पूरी किताब में उन्हें उनके इस ऑपरेशन के दौरान रेडियो नाम मेजर माइक टैंगो के नाम से चित्रित किया गया है। मैंने इंडियाज मोस्ट फियरलेस के लेखक शिव अरूर से पूछा कि भारतीय सेना में एसएफ यानी स्पेशल फोर्सेस है क्या चीज।
स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर को बोलते हैं क्रेम डेला क्रेम ऑफ द सोल्जर्स। सबसे फिट, सबसे सर्वाइवेबल, सबसे स्ट्रॉन्ग, मैक्सिमम मेंटल डेक्सटेरिटी, सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में क्विकेस्ट डिसीजंस करना, बीइंग एबल टू सर्वाइव द लॉन्गेस्ट, यू नो, जिंदा रहना इन अ खतरनाक सिचुएशन। रेगुलर मिलिट्री जो होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो होते हैं डिफेंस के लिए। स्पेशल फोर्सेज दे आर हंटर्स, वो ऑफेंस के लिए है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव किसी पे हमला करना, अटैक करना या कुछ मिशन कंप्लीट करना।
सवाल उठता है कि इस फैसले की पहल उत्तरी कमान या स्पेशल फोर्स की तरफ से हुई या दिल्ली में सेना के नेतृत्व या सरकार की तरफ से।
ये एक जॉइंट डिसीजन था। देखिए, पैरा स्पेशल फोर्सेस जो होते हैं कश्मीर में, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं ऐसे मिशंस के लिए। जब वो ट्रेन करते हैं, जब वो वॉर गेमिंग करते हैं, वो ऑलरेडी एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनारियोज के लिए ट्रेन करते हैं। और वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है इसके बियॉन्ड? क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल बियॉन्ड इनटू एनिमी टेरिटरी और वहां पे हमला करना।
28 सितंबर की रात दिल्ली में भारतीय कोस्ट कमांडर्स का वार्षिक भोज हो रहा था, लेकिन सभी चोटी के मेहमान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जनरल दलबीर सिंह ने अपने मेजबानों से माफी मांगी और सेना के मिलिट्री ऑपरेशन रूम पहुंच गए ताकि उस समय शुरू हो चुके इस अभियान को दिल्ली से मॉनिटर किया जा सके। माइक टेंगो के नेतृत्व में 19 भारतीय जवानों ने 26 सितंबर की रात 8:30 बजे अपने ठिकानों से पैदल चलना शुरू किया। 25 मिनटों में उन्होंने LOC को पीछे छोड़ दिया। टेंगो के हाथ में उनकी M4AI 5.56 mm की कार्बाइन थी। उनकी टीम के दूसरे सदस्य M4AI के अलावा इसराइल में बनी हुई टेवर टार 21 असॉल्ट राइफलें लिए हुए थे।
चॉपर्स का ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि LC जो है वहाँ पे तो सेनाएं तैनात हैं दोनों तरफ से। ये नहीं कि उनकी साइड पे तैयारियां नहीं है, तैनात नहीं है। बहुत ही सीक्रेट तरीके से वो लोग अंदर गए। उन्होंने अंदर जाके फिर सर्वेलेंस किया अपने टारगेट्स का, देखा वहाँ क्या मूवमेंट हो रही है। कई घंटे चलना पड़ा है इनको। और बात जो बहुत मज़ेदार बात है वो ये है कि सब अखबारों में, टीवी चैनल्स में ये आया था हमारी किताब को लेकर कि सर्जिकल स्ट्राइक्स करना तो उतना मुश्किल नहीं था जितना कि वापसी थी। क्योंकि जब आप अंदर जा रहे हैं तो आपने सरप्राइज मेंटेन कर रखा है, दुश्मन को पता नहीं है आप आ गए। बट जब वहाँ गोलियाँ बरस रही हैं, ग्रेनेड्स चल रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स चल रहे हैं, तब तो सारी पाकिस्तानी पोस्ट्स अलर्ट हो गई।
लक्ष्य से 1 किलोमीटर पहले टेंगो ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। 200 मीटर पहले अचानक उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई दी। लेकिन टेंगो के अनुभवी कानों ने अंदाजा लगा लिया कि ये एक अंदाजे से की गई फायरिंग है और इसका निशाना उनकी टीम नहीं है। टेंगो ने तय किया कि वो उस इलाके में छिपे रहेंगे और अपना हमला 24 घंटे बाद यानी अगले दिन रात के अंधेरे में बोलेंगे।
ये मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट डेंजरस फेज था ऑपरेशन का। डेलाइट में ऑपरेशनल एरिया हॉस्टाइल टेरिटरी में सर्वाइव करना, अंधेरे में तो मुश्किल तो है ही, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल तो है ही। क्योंकि याद करिए कि इस चैप्टर में माइक टेंगो ये भी बताते हैं कि 8 पाकिस्तान आर्मी पोस्ट थे उस जगह में जिनका साइट डायरेक्टली उस एरिया में था। मतलब बाइनोक्यूलर्स या थर्मल इमेजेस जो भी था उनका साइट डायरेक्टली उसी एरिया में था अंधेरे में। तो सोचो कि डेलाइट में कितना ज्यादा खतरनाक होता उनका सर्वाइवेबिलिटी।
पूरे 24 घंटे बाद लॉन्च पैड से 50 गज की दूरी पर मेजर टेंगो ने अपने नाइट विजन डिवाइस से 2 चरमपंथियों को पहरा देते हुए देखा। टेंगो ने 50 मीटर की दूरी से निशाना लिया और एक ही बर्स्ट में दोनों चरमपंथियों को धराशायी कर दिया।
उन्होंने जो फर्स्ट शॉट फायर किया था माइक टेंगो ने किया था, और जब हम बात कर रहे थे तो वो हमको बता रहे थे कि जो माहौल में टेंशन होती है वो सिर्फ तब तक होती है जब तक फर्स्ट शॉट फायर नहीं होता है। फर्स्ट शॉट फायर हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, इसके बाद पता है हम इनको खत्म कर देंगे।
मार्क्समैनशिप बहुत जबरदस्त थी, दोनों गिरे पहले ही शॉट में।
बिल्कुल, पहले ही शॉट में गिरे।
इसके बाद तो गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अचानक टेंगो ने देखा कि 2 चरमपंथी जंगलों में भागने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भारतीय सैनिकों पर पीछे से हमला कर सकें। टेंगो ने अपनी बेरेटा 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल निकाली और 5 फीट की दूरी से उन चरमपंथियों पर फायर कर उन्हें गिरा दिया।
उनके पास डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर्स थे और सारे सोल्जर्स के पास नाइट विजन गॉगल्स भी थे। माइक टेंगो का टीम नाइट अटैक में ट्रेन थे। वो आई थिंक 4 या 5 बुलेट से फाइटिंग शुरू हुआ था और बिल्कुल 1 घंटे बाद सब कुछ खत्म था।
इस पूरे ऑपरेशन में 38 से 40 चरमपंथी और 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अब टैंगो के सामने चुनौती थी कि किस तरह वापस सुरक्षित भारत की सीमा में पहुंचा जाए, क्योंकि अब तक पाकिस्तानी सैनिकों को उनकी उपस्थिति का पता चल चुका था।
जब हमने माइक टैंगो से बात की, उसने हमको बताया, उन्हीं के शब्दों में आपको बता रहा हूं, वो कहते हैं कि अगर मैं थोड़ा कई इंच और लंबा होता तो आपके साथ बैठ के आज बात नहीं कर रहा होता। उन्होंने वापस आते हुए एक बड़ा ही सर्किटस रूट लिया, लंबा रूट लिया, मतलब और आगे जाके फिर घूम के वो वापस आए। जो रिटर्न था वहां से, वो एक बहुत ही मुश्किल काम था जो हमारे स्पेशल फोर्सेस के सैनिकों ने बड़े आराम से किया। माइक टैंगो के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो चाहते थे कि उनकी टीम जितने लोग गए उतने खुद चलकर वापस आए, और वही हुआ। दुनिया के सबसे बेहतरीन सोल्जर्स में माने जाते हैं इंडिया के स्पेशल फोर्सेस, मरून बरेज भी इनको कहते हैं प्यार से लोग। पर जब दुश्मन को पता है कि यहां से लोग वापस जा रहे हैं, आप कितनी ही वेल ट्रेंड हो, गोली नहीं देखती आपने कितनी ट्रेनिंग की है नहीं की है। तो मैं कहूंगा इसमें थोड़ा बहुत भाग्य का भी हाथ था कि किसी को भी गोली नहीं लगी। माइक टैंगो बता रहे थे कि गोलियां कान के पास से जा रही थी, कहते जब कान के पास से गोली जाती है तो ऐसी आवाज आती है पट पट, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मौत के कितने नजदीक थे ये जांबाज सिपाही हमारे साथ।
पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक के भारत के दावे को सिरे से नकार दिया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आमिर शरीफ बाजवा ने कहा,
बिल्कुल उन्होंने रात को 2 बजे के करीब उन्होंने फायर स्टार्ट किया था और सुबह 6:30 बजे तक उन्होंने फायर किया, मौलाम्स और मोटर्स का फायर किया और उसका भरपूर जवाब दिया गया, जिसकी वजह से फिर फायर बंद हुआ। और उसके बाद इन्होंने अभी एक ब्रीफिंग में इस तरह का झूठा एक दावा किया कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है ऑन द LOC, ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ है। ये वही फायर है जो पहले भी करते रहते हैं, पहले भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं और आज भी वही करके इसको कोई और शक्ल देने की कोशिश की जा रही है।
भारत ने उरी हमले का तात्कालिक बदला भले ही ले लिया हो, लेकिन इससे सीमा पार से भारत पर होने वाले चरमपंथी हमलों में कोई कमी नहीं आई। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हरकिशन सिंह पनाग कहते हैं,
पहली बात तो पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई इस हमले के जवाब के लिए, वो ये थी कि उन्होंने एक डिनायल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, जिसकी वजह से उन्होंने काफी हद तक जो है जो कामयाबी हमारे को मिलनी थी उसको नकारा कर दिया। हमारे ऊपर उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि आप प्रूव कीजिए कि आपने क्या किया है, और सिक्योरिटी की वजह से हम उस बात को पूरी तरह से साफ नहीं कर सकते। तो एक तरह से पाकिस्तान ने ये स्ट्रेटजी अपनाई। जहां तक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का सवाल है, पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है वो बहुत क्लियर है, वो कश्मीर को हथियाना चाहते हैं, इसके लिए वो एक प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं, और ये इस स्ट्रेटजी में सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से कोई बदलाव नहीं आया है। इन्फिल्ट्रेशन लगातार जारी है और टेररिस्ट जो वायलेंस है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें पिछले साल के बनिस्पत इस साल जो है बढ़ोतरी हुई है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद।
वापस लौटने पर मेजर टैंगो को हेलीकॉप्टर से 15 कोर के मुख्यालय ले जाया गया, जहां कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने उनका स्वागत किया।
जब वो गए तो ऑफ कोर्स सीनियर ऑफिसर्स ने उनकी बहुत वाहवाही की, उनकी पीठ थपथपाई कि इतना बड़े मिशन को अंजाम देकर आए हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचे, ट्रे में एक आदमी उनके लिए ब्लैक लेबल और खाली ग्लासेस लेकर आया। जनरल दुआ साहब ने बोला उसको कि अरे तुम ग्लासेस क्यों लेकर आए हो, तुमको पता नहीं है स्पेशल फोर्सेस वाले ये ग्लास को खा जाते हैं, ये असली में ग्लास को खा जाते हैं, ये कहानी नहीं है, इनको वो टेक्निक आती है, ये ग्लास को काट के खा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि इनको तो हम सीधा बोतल से पिलाएंगे। फिर उन्होंने माइक टैंगो को बोला कि मैं तुम्हारे मुंह में ब्लैक लेबल पोर करूंगा, तो काफी पी गए काफी पिला दी। उसके बाद जनरल दुआ ने माइक टैंगो को बोला, ऐसे नहीं कि मैं जनरल हूं और मैंने तुमको ऐसे पिला दिया, अब तुम भी मुझे ऐसे ही पिलाओगे। फिर माइक टैंगो ने जनरल साहब को वैसे ही ब्लैक लेबल पिलाई।
20 मार्च 2017 को सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम के 5 सदस्यों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर टैंगो को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उस समय उस बात का ज्यादा प्रचार नहीं किया गया कि कीर्ति चक्र पाने वाले और कोई नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो मेजर माइक टैंगो है। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
विवेचना पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और आपको बता दें कि आज रिलीज हुई फिल्म न्यूटन ऑस्कर पुरस्कारों की विदेशी फिल्मों की श्रेणी में भारत की ओर से शामिल होगी। इस फिल्म के सह लेखक मयंक तिवारी इस उपलब्धि पर क्या कहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए bbchindi.com पर। दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।